शीर्षक अपने रचना संसार में गोस्वामी तुलसीदास एक समग्र विवेचन। सिया राम में सब जग जाने, गोस्वामी तुलसीदास की यह प्रसिद्ध उक्ति है। संपूर्ण विश्व को सिया राम में मानते हुए उसके कण कण में उन्होंने अपने आराध्य के विद्यमान होने की बात इस उक्ति में कही है। हर धर्म मजहब में यह बात दोहराई गई है कि सृष्टि का कर्ता अपनी रची सृष्टि के कण कण में विद्यमान रहता है। पैराग्राफ चेंज। भारतीय परंपरा में रचनाकार को भी अपने रचना विश्व का विधाता या प्रजापति कहा गया है। प्लेटो ने भले ही कहा हो कि रचनाकार का रचना विश्व विधाता के रचे विश्व का अनुकरण है, परंतु उसके शिष्य अरस्तु ने अपने गुरु के कथन को निरस्त करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी स्थापना दी है कि रचनाकार विद्यमान विश्व का अनुकरण नहीं करता, उसकी पुनर्रचना करता है। वह विद्यमान विश्व के समानांतर अपने विश्व को रचता है। जिस तरह सृष्टि का कर्ता अपने रचे विश्व के कण कण में विद्यमान रहता है, उसी तरह रचनाकार भी अपने रचना विश्व में अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। उसकी उपस्थिति उसके रचना विश्व में कहीं भास्वर होती है और कहीं उसकी बनावट में इस तरह घुली मिली, उसमें इस तरह अंतर्भुक्त और अंतर्ग्रहित कि उसे शिद्दत से खोजना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। इस कथन की पृष्ठभूमि में आइए गोस्वामी जी के रचना संसार में अवगाहन करते हुए उसमें गोस्वामी जी की विद्यमानता को तलाशे, उनके उस रूपों का साक्षात करें जिन रूपों में वे कहीं भास्वर मुखर तो कहीं नितांत अप्रत्यक्ष उनकी बुनावट में इस तरह घुले मिले हैं कि बड़ी मुश्किल से पहचान के दायरे में आते हैं। पृष्ठ संख्या 224। गोस्वामी जी का रचना संसार बहुत व्यापक और विशद है। कविता के दोनों रूपों प्रबंध और मुक्तक का समावेश उसमें है। जीवन के अंतरे कोने से लेकर उसके समग्र प्रसार तक उनकी दृष्टि गई है। इसी नाते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी कविता को पूर्ण कविता और उसे पूर्ण कवि कहा है। आदमी के बाहरी क्रियाकलापों से लेकर उसके मनोभावों के सूक्ष्म से सूक्ष्म तह के तह तक भी गए हैं और आदमी को उसके संपूर्ण अंतर्वाह में उन्होंने जांचा और परखा है। नर जगत के अलावा नरेतर बाह्य जगत भी अपने समूचे प्रसार में उनकी दृष्टि की परिधि में आया है। वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, समूचे प्राणी जगत को उन्होंने अपनी रचनाओं में मूर्त किया है। जड़ और चेतन सब उनके जगत के दायरे में आए हैं। तुलसी का रचना संसार बहुत विशद है, यह हम कह चुके हैं। प्रामाणिक रचनाओं की बात करें तो आरंभ में रामलला नहचू, बरवे रामायण, सतसई से, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और हनुमान पाहुक, जिसका समावेश कवितावली में है। ये 12 रचनाएं गोस्वामी जी की प्रामाणिक रचनाएं कही गई है। हनुमान पाहुक जैसा हमने कहा कवितावली के साथ संलग्न है। इन रचनाओं के अलावा जो कुछ गोस्वामी जी के नाम पर मिलता है प्रामाणिक नहीं है। गोस्वामी जी की रचनाओं के कालक्रम को लेकर भी मतभेद है, परंतु इतना निश्चित है कि विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक गोस्वामी जी के द्वारा सबसे रचित बाद की रचनाएं हैं। विनय पत्रिका प्रौढ़ावस्था में पहुंचे तुलसीदास की और हनुमान पाहुक वृद्ध तुलसीदास की रचनाएं हैं। हनुमान पाहुक के उपरांत कदाचित वे कुछ भी नहीं रच सके। यह भी दृष्टव्य है कि बराबर स्थान बदलते रहने वाले तुलसी प्रौढ़ अवस्था में स्थायी रूप से काशी में आ बस गए थे। विनय पत्रिका और हनुमान पाहुक दोनों ही कृतियां काशी में रचित कृतियां हैं। स्पष्टतः गोस्वामी जी की रचित उपर्युक्त कृतियों में रामचरितमानस ही प्रबंधात्मक रचना है। शेष रचनाएं रामकथा या दूसरे अखानों को लिए हुए भी वस्तुतः छोटे आकार की मुक्तक रचनाएं ही है। कदाचित विनय पत्रिका तथा हनुमान पाहुक गोस्वामी जी की ये दो रचनाएं ही है जिसमें किसी भी तरह की कथा या आख्यान नहीं है। पृष्ठ संख्या 225। ये रचनाएं मूलतः आत्मनिवेदन परक रचनाएं हैं जिनमें एक ओर तुलसी दास है दूसरी ओर उनके आराध्य या पूज्य जिनको उनका यह आत्मनिवेदन संबोधित है। विनय पत्रिका का आत्मनिवेदन राम को संबोधित है, जबकि हनुमान बाहुक में पहली बार हनुमान को केंद्र में लाकर उन्होंने अपनी आत्मव्यथा निवेदित की है। प्रसंगतः राम और शंकर के प्रति भी उनका कुछ निवेदन इस कृति में है। बहरहाल, रचना मुक्तक हो अथवा प्रबंध, छोटे आकार की हो अथवा बड़े आकार की, अपनी हर रचना में गोस्वामी जी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान जरूर हैं। उन रचनाओं में जो छोटे आकार के बावजूद राम कथा के किसी न किसी पहलू को अथवा जो आख्यान उसमें है उसके किसी न किसी पहलू को समेटे हुए है। गोस्वामी जी की उपस्थिति को भापने में या गोस्वामी जी को खोजने में कुछ कठिनाई होती है। उन्हें रचना में वर्णित स्थितियों, घटनाओं, आख्यान की परतों, चरित्रों आदि के बीच में खोजना पड़ता है, परंतु जिन रचनाओं में उनका आत्मनिवेदन मात्र है उनमें गोस्वामी जी को खोजने में परेशानी नहीं होती। विनय पत्रिका तथा हनुमान बाहुक ऐसी ही आत्मनिवेदन परक रचनाएं हैं। इन रचनाओं में गोस्वामी जी से हमारा सीधा साक्षात्कार होता है। ऐसे कुछ स्थल कवितावली और दोहावली में भी है। अधिक बारीकी में न जाएं तो अपने रचना संसार में गोस्वामी जी मुख्यतः चार रूपों में हमें मिलते हैं। व्यक्ति के रूप में, भक्त के रूप में, कवि के रूप में और लोक के व्यवस्थापक लोकनायक के रूप में, लोक धर्म के प्रशस्ता के रूप में। अपनी चर्चा में हम गोस्वामी जी के इन चार रूपों को क्रमशः अपने विचार का विषय बनाएंगे। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः किसी भी रचनाकार पर, और यदि वह बड़ा रचनाकार है तो खास तौर पर, कोई भी निर्णायक अभिमत तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक उस रचनाकार को उसकी समग्रता में, उसके संपूर्ण विकास क्रम के साथ देखा और परखा न जाए। कोई भी रचनाकार अपने समूचे विकास क्रम में निरंतर विकसित होता रहता है। उसका यह विकास ऊर्ध्वमुखी हो या अधोमुखी, अपने संपूर्ण रचनाकाल में वह अनुभव और विचारों के स्तर पर एक सा नहीं रहता, परिवर्तन की स्थितियों से गुजरता है। न जाने कितने उत्कर्ष और अपकर्ष के पड़ावों से गुजरता हुआ वह अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचता है। इन्हीं उत्कर्षों और अपकर्षों के जरिए उसके आत्मसंघर्ष का साक्ष्य भी हमें मिलता है। विकास के दौर में प्रायः रचनाकार खुद भी नहीं जान पाता कि वह अपनी अंतिम मंजिल पर अपनी किन फलश्रुतियों के साथ पहुंचेगा, इच्छित गंतव्य को पाएगा भी या नहीं। पृष्ठ संख्या 226। इसी नाते रचनाकार पर निर्णायक अभिमत उसे उसकी संपूर्णता में, संपूर्ण विकास क्रम में जानकर ही दिया जाना चाहिए। उसकी रचना यात्रा के किसी खास पहलू पर या उसकी किसी भी रचना पर निर्धारित निर्णय प्रायः उसे आधा अधूरा अप्रामाणिक रूप से ही जानना होगा, अतः ऐसा निर्णय भी संदिग्ध ही रहेगा। पैराग्राफ चेंज। गोस्वामी जी पर दिए गए निर्णयों में सबसे बड़ी विडंबना वस्तुतः यही है, उनकी प्रशंसा हो या आलोचना निंदा, प्रायः उनका आधार उनकी एक रचना रामचरितमानस ही पर रही है। उसे साहित्यिक ग्रंथ के रूप में भी देखा गया है और एक धर्म ग्रंथ के रूप में भी। गोस्वामी जी के उपयुक्त चारों रूप भी उनके किसी न किसी स्तर पर रहे हैं। रामचरितमानस वस्तुतः गोस्वामी जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, परंतु फिर भी वह उनकी एक रचना ही है। जो कुछ इससे इतर है वह भी गोस्वामी जी के द्वारा ही दर्शाता हुआ है। ऐसी स्थिति में मात्र रामचरितमानस के आधार पर गोस्वामी जी के बारे में दिए गए अभिमत वे कैसे भी हों पूर्णतः और प्रमाणित नहीं कहा जा सकते। ऐसी स्थिति में आइए सबसे पहले अपने रचना संसार में विद्यमान गोस्वामी जी के व्यक्ति रूप को देखें, जो कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष स्थितियों, राम कथा, उनकी घटनाओं तथा पात्रों में अंतर्ग्रथित अपने ढंग से विद्यमान है। गोस्वामी जी की रचनाओं में उनके व्यक्ति रूप में कुछ बड़े महत्वपूर्ण अंतर साक्ष्य है। स्पष्ट और नितांत पारदर्शी ये अंतर साक्ष्य बताते हैं कि गोस्वामी जी का बचपन घोर दरिद्रता में बीता था। अनाथ, द्वार द्वार भीख मांगते हुए, अभाव और दैन्य की विषय स्थितियों से जूझते टकराते। कहते हैं कि अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के नाते नवजात शिशु में कुछ असामान्य लक्षण देखकर माता पिता ने उन्हें जन्मते ही त्याग दिया था। मातु पिता जग जाई तज्जियो जन्मी, कर्म विदु विघूहूँ, सृज्यो और डेरो। कवितावली के कुछ छंदों में भी गोस्वामी जी के घोर दारिद्र्य के अंतर साक्ष्य है, जैसे जायो कुल मंगल बधा वनो बजायो, सुन भयो परिताप पाप जननी जनक को। बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि ही जनक को। यह तो सहसा अवस्था की मार्मिक आख्यान है। आगे भी काशी में गोस्वामी जी को बहुत दुख उठाने पड़े। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, कि उनकी उक्ति काशी के कट्टरपंथी पंडित वर्ग द्वारा निरंतर उन्हें अपमानित किए जाने के फलस्वरूप ही सामने आई थी। पृष्ठ संख्या 227। कवितावली, दोहावली। विनय पत्रिका में अनेक स्थलों पर गोस्वामी जी के आरंभिक जीवन संदर्भ अपने मार्मिक यथार्थ में सामने आए हैं। जीवन पर्यंत अपने कठोर जीवन संघर्ष को अपनी मनोभूमि में वे संभाले रहे हैं, वे उन्हें विस्मृत नहीं कर सके हैं। इस प्रसंग को अधिक विस्तार न देकर हम अब व्यक्ति गोस्वामी जी के एक अन्य निजी जीवन प्रसंग की चर्चा करेंगे। लोक मान्यता है कि तुलसीदास जी का विवाह श्री दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था, जो स्वयं विदुषी थी। तुलसीदास भी तब तक रामकथा के उद्गाता के रूप में ख्यात हो चुके थे। पत्नी के प्रति उन्हें बेहद लगाव था। उसी के वशीभूत होकर बिना बुलाए वे अपने ससुराल पहुंच गए। ससुराल में उन्हें यूं अनाहूत देखकर रत्नावली लाज से गड़ गई। लोक मान्यता है कि उसने तुलसीदास की इस काम अंधता पर उन्हें फटकारा। रत्नावली की कही गई इसी संदर्भ की उक्ति लोक प्रसिद्ध है। अस्थि चरवमय देह मम तामे जैसी प्रीति, होती जो श्री राम मह होती न क्यों भाव भीती। रत्नावली की फटकार ने गोस्वामी जी को भीतर तक मथा और उसी के परिणाम स्वरूप काम के पथ से हटकर पूरे मन से वे राम के पथ पर आ गए। कहते हैं बात को रत्नावली ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु तुलसीदास रुके नहीं। पूरे जीवन उन्होंने पत्नी का विछोह सहा और पूरे जीवन रत्नावली पतिव्योक्ता रही। राम के प्रति गोस्वामी जी की जो यह अविचल आस्था है, उसके मूल में संभवतः गोस्वामी श्री राम और स्वयं उनके कुछ मिलते जुलते जीवन संदर्भ है। गोस्वामी जी बचपन में ही माता पिता से अलग हो गए थे। श्री राम भी बचपन में माता पिता से अलग विश्वामित्र के संरक्षण में रहे। युवा अवस्था में जिस तरह तुलसीदास को पत्नी के लंबे विछोह को झेलना पड़ा, श्री राम को भी सीता के हरण के चलते पत्नी विछोह की व्यथा लंबे समय तक झेलनी पड़ी। यद्यपि गोस्वामी जी और रत्नावली के प्रसंग को कितना प्रमाणित माना जाए कहा नहीं जा सकता, किंतु लोक प्रसिद्ध तो वह है ही। गोस्वामी जी ने भी अपनी रचनाओं में जहां अपने निजी जीवन संदर्भों का अनेक स्थलों पर हवाला दिया है, रत्नावली प्रसंग पर सीधे उन्होंने कहीं भी कुछ कहा या लिखा नहीं है, किंतु गहराई से देखा जाए तो रामचरितमानस में बड़े सांकेतिक रूप में उन्होंने अपने एक निजी जीवन प्रसंग का उल्लेख किया है। संकेत इतना सूक्ष्म है कि उसे मर्मी ही परख और भाप सकते हैं। पृष्ठ संख्या 228। प्रसंग, अयोध्या कांड में उस समय का है जब राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास के लिए सरयू के तट पर छोड़कर सुमंत्र वापस लौटते हैं। गोस्वामी जी ने इस अवसर पर सुमंत्र की जिस मनोदशा को अनेक उपमाओं तथा दृष्टांतों से सजीव किया है, उसी के क्रम में उनकी ये पंक्तियां सामने आई है। विप्र विवेकी वेद विद समंत साध सुजाति, जिमि धोखे मदपान करी सजीव सोच तिहि भाति। स्पष्टतः गोस्वामी जी यहाँ अपनी उस भूल की ओर संकेत कर रहे हैं जो काम के वशीभूत होकर बिना बुलाए ससुराल जाकर वे कर बैठे। काम आंधता ने वेद शास्त्र तथा उनके सारे पढ़े लिखे को, कुल वंश की मर्यादा, उनके विवेक, सबको हाशिए पर डाल दिया। इस दोहे के ठीक आगे जो चौपाई है, उसे देखो तो साफ लगता है कि उसके केंद्र में और कोई नहीं, रत्नावली अपने जीवन स्थिति के बारे में हमारे सामने है। जिमि कुलीन ती साधु सयानी, पति देवता करम मन पानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण ताहु। मन वचन और कर्म से पति को देवता मानने वाली कुलीन वंश की किसी सुशील संस्कारी विवाहिता को दुर्भाग्यवश आजीवन पति से अलग रहना पड़े। सुमंत्र के हृदय में कुछ वैसा ही दारुण दाह हो रहा था। रत्नावली का विछोह आजीवन तुलसी के मन में कहीं गहरे कसकता रहा है, वे उसे भुला नहीं पाए हैं। उनके कहे लिखे में कहीं बड़ी बहरी कहीं बड़ी महीन बुनावट में उनके लाख प्रयासों के बावजूद कि वह दबा रहे, वह झलक ही जाता है। आगे हम इसे स्पष्ट करेंगे।